ओम शांति। सब खुश है? सब खुश है? कितना खुश है? बहुत खुश है। ये खुशी स्थायी रहेगी हमेशा हमेशा। बाबा के घर आते हैं, यहां तपस्या किया तो वो तो शक्ति भरे, बाबा से प्यार अनुभव किया तो खुशी तो होगा ही, है ना। लेकिन ये खुशी वापस जाने के बाद ऐसा ही रहे, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत है। कुछ बातों में उसका उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? इतना मेहनत कर रहे हैं आप, इतना दूर आए बाबा के घर यहां ज्ञान सरोवर में, और सुबह सुबह उठते हैं, अमृत वेला योग में बैठते हैं, भाग भाग के मुरली क्लास में आते हैं, वहां भी जहां से भी आप आए हैं तो वहां भी आप पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। इतना कुछ मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं मेहनत? थोड़ा जोर से बोलेंगे तो सुनाई देगा। विश्व कल्याण के लिए मेहनत कर रहे हैं। और किस लिए मेहनत कर रहे हैं? एम ऑब्जेक्ट क्या है आपका? देवी देवताएं बनना, लक्ष्मी से लक्ष्मी नारायण बनना, है ना। बाबा के कार्य में सहयोग करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए, है ना। बाबा के कार्य में मदद भी हम क्यों कर रहे हैं? विश्व का कल्याण भी हम क्यों कर रहे हैं? बाप समान बनने का भी पुरुषार्थ हम क्यों कर रहे हैं? अंतिम लक्ष्य क्या है? देवी देवताएं बनना, लक्ष्मी नारायण बनना। बोले लक्ष्मी नारायण सभी बनते नहीं है, देवी देवता है तो बन ही जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का पोस्ट एक ही है ना। वो पोजिशन तो वो फिक्स्ड हो गया अभी, है ना। हाँ, 84 जन्म पूरे करने, पूरा तो है ना, लास्ट जन्म नहीं है आपका। हाँ, हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं सुख धाम में जाने के लिए, और सभी आत्माएं मुक्ति धाम में जाएंगे, शांति धाम में जाएंगी। हम बाबा के बच्चे कहां जाएंगे? सुख धाम जाएंगे। और हम आत्माओं को वो संस्कार में है तो इसीलिए हमें पता है कि हमें सुख धाम जाना है, इसीलिए हम बाबा को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन जो द्वापर युग से आते हैं वो आत्माएं, जो साधु संत हैं, वो पुरुषार्थ कर रहे हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए, मुक्त होने के लिए, क्योंकि उनके संस्कार में सतयुग का सुख है ही नहीं ना, तो उनको पता ही नहीं है, तो इसीलिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं मुक्ति में जाने के लिए। लेकिन हम लोगों का भाग्य ये है कि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। लेकिन फिर बाबा कहते हैं वो पुरुषार्थ अनुसार, यथाशक्ति पुरुषार्थ अनुसार हम अपना पोजीशन पाते हैं। सभी फर्स्ट में नहीं आते हैं, सभी फर्स्ट डिवीजन में नहीं आते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करता है उतना अपना पद पाते हैं, है ना। तो कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जो हमें संगम युग में करने की जरूरत है, ताकि फिर हम वो सुखधाम में हम अपना पोजीशन भी अच्छा पाए और यहाँ भी हम उस सुख की अनुभूति हम कर सके। बाबा हमेशा जब कहते हैं वर्षे की बात कहते हैं, कितने जन्मों का वर्षा देते हैं बाबा? 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, है ना? केवल एक जन्म के लिए वर्षा नहीं देते हैं, 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। लेकिन कैलकुलेट अगर करते हैं, सतयुग के 8 जन्म और त्रेता के 12 जन्म, तो वो हुए 20 जन्म। और 21वां जन्म कौन सा है? संगम युग का जन्म है, है ना? भले हम इस शरीर में हैं, साधारण शरीर में हैं, लेकिन फिर भी हम वर्षा तो अभी यहाँ ही अनुभव करना है ना बाबा से। सर्व शक्तियों का अनुभव, सर्व गुणों का अनुभव, बाबा से ज्ञान और प्रेम का अनुभव, ये सब कुछ इस जन्म में ही यहाँ करना है। तो ये जन्म भी काउंट हो गया इस उस वर्षे में, है ना? तो इस जन्म में हमें वो संस्कार भरते जाना है। सतयुगी देवी दुनिया का संस्कार हमें इस जन्म में ही भरना है। बाबा कहते हैं अंत मते सो गते। तो यहाँ जिस स्मृति में हम जब रहते हैं शरीर छोड़ते समय, उस आधार से हम अगले जन्म लेंगे। अगर मैं इस जन्म में शरीर छोड़ते समय बाबा की याद में नहीं हूँ, या फिर कोई देहधारी के कनेक्ट कोई याद आ रहा है, तो अगले जन्म में मैं सतयुग में जाऊंगी? नहीं ना। तो उस अंतिम घड़ी हमारा वो इतना शक्तिशाली रहे, इतना डिटैच रहे, इतना हम बाबा की याद में मग्न रहे, ताकि फिर हम उस दैवी दुनिया में हम जा सकते हैं, है ना? तो उसके लिए अभी से पुरुषार्थ करने की जरूरत है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ जब समय आएगा तो देखा जाएगा। जब समय आएगा शरीर छोड़ने का, उस समय हमारे पास पुरुषार्थ करने के लिए समय, एक तो समय नहीं रहेगा, एक तो हमारी मनोस्थिति इस रीति से नहीं रहेगा हम बाबा को याद करें। अगर सारे अभी से हम पुरुषार्थ नहीं किए हैं, अंतिम घड़ी भी हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास, अभी से उस समय के लिए हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत, तैयारी करने की जरूरत है, है ना? तो इसलिए वो सुख का संस्कार हम अपने अंदर इतना खूट खूट के भरे, ना केवल हम शांति धाम में जाएं, शांति धाम होते हुए हम सुख धाम पहुंच सके, है ना? तो उसके लिए हम क्या करें? जब हम नए नए बाबा के घर में आते हैं, बाबा को पहचानते हैं, 7 दिन का कोर्स करते हैं, तो कितना नशा चढ़ता है। हाँ भगवान आ गए हैं, हम भगवान से मिल गए, मिल लिए हैं, तो इतना नशा, इतनी खुशी चढ़ जाता है। हम इस दुनिया में, हमारा पैर कहाँ, इस धरती पर तो होता ही नहीं है, हम ऊपर उड़ते रहते हैं, है ना? इतनी खुशी हम अनुभव करते रहते हैं, लेकिन धीरे 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 वो खुशी कम क्यों हो जाता है? कम क्यों हो जाता है? कम क्यों हो जाता है? रेगुलर याद में नहीं होते हैं। एक बात होती, पहले पहले जब आते हैं तो केवल हम बाबा को देख रहे होते हैं, केवल ज्ञान के मगन में हम रहते हैं। जिसको भी सेंटर पे आते हैं, भाई बहनों को देखते हैं, सभी फरिश्ते लगने लगते हैं, फरिश्तों के रूप में देखते हैं, सफेद वस्त्रधारी फरिश्ते हैं, देवी देवता हैं, बहुत ही नशे से, उस दृष्टिकोण से हम हर एक को देख रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे हर रोज जब आना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कमियों को देखना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे से फिर हम देह भान में आना शुरू करते हैं, है ना। तो इसलिए अपने खुशी, अपने ये जो शक्ति खुशी के ये बचा के रखने के लिए सबसे पहली बात है जिसकी बहुत जरूरत है, हर एक बात में हम पॉजिटिव देखें, है ना, पॉजिटिव देखें, हर आत्मा के गुणों को देखना शुरू करें और हर ड्रामा के सीन में भी कल्याण को देखें। हर बात में जब हम सकारात्मकता को देखते रहेंगे तो हमारे अंदर वो खुशी बढ़ता जाएगा। लेकिन नकारात्मकता कहीं भी आया, दूसरों के अवगुण को देखना शुरू किया तो वहां दुख आरंभ हो जाता है, तो वहां फिर कहीं ना कहीं फिर ब्लेम करना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं दूसरों पर दोष देना शुरू करते, कहीं ना कहीं ये फिर वो भारीपन अपने मन के अंदर भारीपन होने के कारण से फिर वो नकारात्मक शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं। तो इसीलिए मम्मा जब भी किसी को रोते हुए देखते थे ना, मम्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कौन रोते हैं? मम्मा और बाबा भी हमेशा ये कहते थे कि रोने वाली जो आत्मा है वो विधवा है। दादियों का अपना अनुभव सुनाते हैं, क्योंकि जब दादियां जब यज्ञ में आई तो बहुत ही छोटे छोटे थे, कोई 8 साल के थे, कोई 10 साल के थे, कोई 12 साल के थे, और जब घर में रहते थे तो बहुत ही छोटे परिवार में रहते थे, लेकिन यज्ञ में आए तो 300 लोग 400 लोग एक साथ जब रहना शुरू किया तो संस्कारों का टकराव तो होता ही था, बड़े संगठन में संस्कारों का टकराव तो होता ही है ना। और उस समय तो बच्चे थे तो रोना धोना होता था, तो मम्मा और बाबा दोनों उन बच्चों को देख करके कहते थे यह विधवा हो, विधवा जो रोते हैं वो विधवा है, आप कौन हो, आप कौन हो। शिव बाबा के साथ हमारी सगाई हुई है, शिव बाबा के साथ हमारा रिश्ता जुड़ा है, हमारे जो सुहाग है वो कभी मरता नहीं है, है ना। तो हम कभी विधवा नहीं हो सकते, तो हम रो नहीं सकते। फिर बाबा की जो बेटी है निर्मल शांता दादी, निर्मल शांता दादी के बारे में आप जानते हैं सभी, निर्मल शांता दादी कौन है? निर्मल शांता दादी ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी। वो जब बाबा के पास आए तो क्योंकि उनके मन के अंदर तो ये था ना कि जब लौकिक परिवार में थे बाबा और बाबा की युगल और 4 बच्चे थे, तो बहुत ही प्यार से, लाड़ प्यार से बाबा ने हर बच्चे को पाला था। दादा लेखराज बहुत लाड़ प्यार से पाले थे, कभी भी वो जोर से बोलते नहीं थे, कभी भी बच्चों के ऊपर बच्चों को मारते नहीं थे, बहुत प्यार से युक्ति से बच्चों को चलाते थे और बहुत ही प्यार लुटाते थे बच्चों के ऊपर। जब ये यज्ञ रचा, यज्ञ में आए तो सभी बहनें, मेजोरिटी तो बहनें आई, तो करीब 350 बहनें जब यज्ञ में रहना शुरू किया तो बाबा का ध्यान लौकिक बच्चों के ऊपर ज्यादा नहीं रहा, फिर इतने सारे बहनें आई तो फिर उन पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, ज्ञान योग में इतने मग्न थे तो ज्यादा प्यार लौकिक बच्चों को नहीं दे सकते थे क्योंकि समय ही नहीं होता था। तो निर्मल शांता दादी को बहुत फीलिंग आती थी कि लगता था कि बाबा मुझे प्यार नहीं करते हैं अभी लौकिक में, जो तो बहुत प्यार करते थे, भले वो शादीशुदा थे, वो अपने ससुराल जाते थे लेकिन जब भी मायके में आते थे बाबा बहुत प्यार करते थे, बहुत समय देते थे, साथ में भोजन करते थे, बहुत प्यार करते थे। लेकिन अभी जब आते थे तो हमेशा ज्ञान ही सुनाते थे, जैसे लगता था कि मुझे दूर भगा रहे हैं, जैसे धक्का दे रहे हैं, ज्ञान ही सुना रहे हैं। तो बहुत ही दुख होता था कि वो हमेशा रोते थे। हमारे घर में ऑब्वियसली सभी को होता है ना कि अगर आपके घर में इतने सारे लोग आकर के रहना शुरू किया और आपके पिता आपके ऊपर बारे में ध्यान ही ना दे तो आपको तो रोना आएगा। तो दादी को भी रोना आता था। तो फिर एक बार दादी रोते बैठी थी तो बाबा आए और बाबा ने कहा, बच्ची आप कौन हो, क्यों रो रही हो? तो रोते रोते दादी ने कहा कि मैं आत्मा हूं। तो बाबा ने कहा कि नहीं, आप सजनी हो भगवान की, आपकी जो सुहाग है कभी वो मर नहीं सकता, तो इसीलिए विधवा के रूप में आप रो नहीं। तो तब से लेकर के दादी रोना बंद कर दिया है ना। तो कभी भी हम भी मन से रोते हैं क्या, आंखों से रोते हैं? माताएं आंखों से रोते हैं? पानी आता है कभी? आता है? किसको आता है पानी? आंखों से जो रोते हैं वो हाथ उठाओ। बहुत सारे हैं, देखो बहुत सारे माताएं अभी तक रोते हैं। आज है ना, खत्म कर देना ये संस्कार, रोना बिल्कुल नहीं है। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं कभी वो रोती नहीं है। मम्मा कभी नहीं रोई, मम्मा कभी नहीं रोई, क्योंकि जो रोता है वो खोता है। मतलब रोने से आत्मा की जो शक्तियां कम हो जाते हैं। रोता कौन है? जो फेल होता है वो रोता है ना। रोना माना फेल हो जाना। मम्मा कभी नहीं रोई, इसीलिए वो नंबर वन में आई है ना। भले परिस्थितियां कितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं, कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां हैं, लेकिन कभी भी रोना नहीं आना चाहिए। ना आंखों से रोना है, ना मन से रोना है। मन से रोना माना, मन से रोना माना दुखी होना। दुखी होकर के क्या सोचते रहते हैं? मन से कैसे रोते हैं? मन से कैसे रोते हैं भाई? अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं भाई। अक्सर आंखों से नहीं रोते हैं, अंदर ही अंदर ज्यादा रोते हैं है ना। तो अंदर ही अंदर घुटते रहना, माना अरे ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ, जो एक्सपेक्टेशन है उस रीति से नहीं हो रहा है, जैसे चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, तो अंदर ही अंदर दुखी होते रहना है ना। तो इसको अंदर मन का रोना कहते। बाबा कहते हैं मन से भी नहीं रोना है, जो भी बात है बाबा को दे देना चाहिए। जो भी बात है बाबा को साथ रख करके चलते हैं, बाबा को साथी बना करके चलते हैं, तो वो कभी नहीं रोएगा, वो कभी नहीं दुखी होगा। अगर ऐसे कभी भी परिस्थितियां आए ना, तो ये याद रखना बाबा हमारा साथी है, वो सर्वशक्तिमान है। ये याद हमेशा जब रहता है कभी भी दुखी नहीं होते। मान लीजिए अगर आपको कहीं अंधेरे में रात को 12 बजे जाने के लिए अगर कहते हैं, वहां बहुत खजाना मिलने वाला है, वहां 12 बजे 1 बजे रात को जाएंगे तो आपको खजाना मिलेगा, आप जाएंगे वहां? आप जाएंगे? खजाना मिलने वाला है रात को 12 बजे या 1 बजे उस जगह पर जाएंगे, सुनसान सड़क है, वहां अंधेरा है, तो वहां जाएंगे तो वहां खजाना मिलेगा, जाएंगे आप? खजाना मिलेगा ना? खजाना मिलेगा, नहीं जाना है? अंदर ही अंदर होता है कि हाँ जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन डर तो रहता है कि पता नहीं अकेले जाएंगे, खजाना तो मिलेगा लेकिन फिर अकेले जाएंगे तो मैं मर ना जाऊं, कोई मार ना दे मुझे। लेकिन अगर आपको कहे कोई ऐसा कोई पहलवान है आपके साथ, आपके बॉडीगार्ड बन करके आपके पास जाएगा, फिर जाएंगे? नहीं, इसकी बात छोड़िए अभी, तो वो जो खजाना मिलने वाला है, अगर पहलवान आपके साथ जाएगा जिस जो जूडो कराटे सब कुछ आता है और उसके पास एक बहुत पावरफुल गन है ना, तो वो उसके साथ जाएंगे आप? जाएंगे? कौन कौन बोल रहे हैं जाएंगे, हाथ उठाइए। और कौन कौन नहीं जाएंगे वो हाथ उठाइए। और दोनों में नहीं उठाया वो लोग कौन है? अभी तक डिसाइड कर रहे हैं कि जाना है कि नहीं जाना है, अभी तक कंफ्यूज्ड है। अगर धीरे से आकर के आपके कान में ये बताएं कि वो जो पहलवान है ना वो टेररिस्ट है, तो क्या आपको उसके साथ जाएंगे? आतंकवाद है वो। अगर धीरे से वो आकर के बोलेंगे आपके कान से कान में, तो आप उसके साथ जाएंगे? फिर नहीं जाएंगे। जब ये बात सुनते हैं कि ये टेररिस्ट है, तो फिर उस पर निश्चय कम हो जाता है, विश्वास कम होने के कारण से फिर डर लगने लगता है। ऐसे ही सर्वशक्तिमान बाबा हमारा साथी है, लेकिन थोड़ा सा भी थोड़ा निश्चय की कमी बैठ गया ना कि पता नहीं बाबा मेरी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। बाबा में विश्वास तो है कि बाबा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है, ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तियों का भंडार है, बाबा में विश्वास है, लेकिन इस बात में थोड़ा सा संशय है कि क्या सचमुच बाबा मेरी मदद करेंगे। तो जहां संशय आया वहां फिर वो जो मदद मिलना चाहिए वो हम मदद नहीं ले सकते हैं। जैसे वो पहलवान की बात, जैसे थोड़ा भी संशय बैठ गया तो उसके साथ नहीं जाएंगे, उसको दूर कर देंगे, है ना। तो ऐसे ही बाबा में थोड़ा भी संशय आया, हाँ नियमित रूप से योग करेंगे, अमृत वेले योग करना या कोई मतलब मुरली क्लास में पहुंचना, ज्ञान सुनना, लेकिन जब भी कुछ परिस्थितियां आए और बाबा मेरी मदद के लिए खड़े हैं वहां, वो हम अनुभव नहीं कर पाते। तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि मैं आत्मा इतनी छोटी हूं, या फिर मैं इतनी साधारण हूं, इतने सारे पाप कर्म किए हैं, तो वो अपने ही पाप कर्म अपने को खाना शुरू करता है। तो उसके कारण से गिल्टी फील होने के कारण से फिर बाबा से वो मदद हम नहीं ले पाते हैं, वहां फिर हमारी जो खुशी है वहां खत्म हो जाता है। लेकिन बाबा ने क्या हमें सबको प्रॉमिस किया है, हर बच्चे को बाबा साथ देंगे, है ना, चाहे वो मणके के लास्ट नंबर भी क्यों ना हो। बाबा कहते हैं कि मैं उस आत्मा को भी मैं इतना ही प्यार करता हूं जितना फर्स्ट नंबर, है ना। प्यार में बाबा कभी अंतर नहीं करते, मदद में भी बाबा कभी अंतर नहीं करते, लेकिन हम लेने में कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते, है ना। तो इसीलिए बाबा में 100% निश्चय हो कि सचमुच बाबा मेरा साथी है और बाबा मेरा मुझे मदद करने के लिए हमेशा मेरे साथ है। जब वो अनुभव करते हैं तो हर कदम पर बाबा की मदद हम ले सकते हैं, ना केवल बड़े बड़े परिस्थितियों में, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी बाबा को साथ रखने की आदत डालनी होगी। क्योंकि अभी ऐसे हम सभी के परिस्थिति है, अभी कलयुगी दुनिया चल रहा है बाहर, हमारे लिए संगम युग है, लेकिन बाहर तो कलयुगी चल रहा है, वहां की वाइब्रेशंस तो दुखमय है, नेगेटिव है, तो उसका प्रभाव तो हमारे ऊपर आ ही रहा है ना। बाहर दुनिया में है, हम हर रोज बाहर जाते हैं, उन लोगों के साथ हमारा कनेक्शन तो है ही है, लेन देन तो करना ही पड़ता है, तो उनका नेगेटिव प्रभाव तो हमारे ऊपर है, तो इसीलिए हमें एक्स्ट्रा मदद की जरूरत है, नहीं तो फिर बाबा की मदद हम नहीं लेंगे, हमारी शक्ति फिर नीचे उतरना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हर समय बाबा को साथ लेकर के चलने की आदत हमें डालने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों में भी, अगर जा रहे हैं क्या सब्जी खरीदना है, ये खरीदना, तो क्या मैं उन छोटी छोटी बातों के लिए भी मैं बाबा के साथ वार्तालाप कर रही हूँ, बाबा के साथ बातें कर रही हूँ, कि केवल बड़ी बातों के लिए नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए भी बाबा को साथ जब हम रखते हैं, जितना हम बाबा को अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व करते हैं, जैसे हम कोई शादी करके जाते हैं तो वो फिर सोचना शुरू करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, जब भी वो लोग सोचते हैं दोनों के लिए सोचते हैं, जब शादी नहीं हुई है तो केवल अपने लिए सोचते हैं, एक व्यक्ति के लिए सोचते हैं, शादी होने के बाद हमेशा दो लोगों के लिए वो सोचते हैं, कभी वो अलग नहीं हो सकते। जब भी हम अपने लिए सोचते तो अपने युगल के लिए भी सोचते, परिवार के रूप में वो सोचना शुरू करते हैं। हमारी सोच भी ऐसा होना चाहिए कि मैं अकेले अपने लिए नहीं सोच रही हूँ, बाबा मेरे साथ है, हर बात में बाबा के राय लेने की जरूरत है। जितना हम बाबा को अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व करना शुरू करते हैं, उतना हम सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं तो फिर ये आदत है ना, द्वापर युग से लेकर के ये आदत है कि अपने खुद के बारे में सोचना, क्योंकि देह भान में है तो खुद के लिए सोचते हैं और डिसीशन भी हम इंडिपेंडेंटली लेना चाहते हैं, और कलयुगी संसार का ये आदत बन गया है, हर एक को स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम की आवश्यकता है। हर आजकल के बच्चे भी ये कहते हैं कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना है, तो मुझे अपना डिसीशन लेना, अपना निर्णय लेना है, तो ये सोचते हैं। लेकिन बाबा के बनने के बाद हमें हर बात में बाबा की राय लेने की आदत, हम जितना हम डालते जाएंगे उतना हमारी जो डिसीशंस हैं, हमारे जो निर्णय हैं, वो एक्यूरेट होता जाएगा, हम सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि जितना हम मर्यादाओं के अंदर रहेंगे उतना सुखी रहेंगे, मर्यादाओं को क्रॉस किया वहां दुख आरंभ हो जाता है। रामायण में ऐसा ही हुआ ना, सीता मैया ने वो लक्ष्मण रेखा पार किया तो वो दुख अनुभव करना शुरू हो गया। जब तक वो लक्ष्मण रेखा के अंदर थी, सुरक्षित थी, सुखी थी, लेकिन लक्ष्मण रेखा भी किस लिए वो पार किया, किस लिए पार किया, किसी को दुख देने के लिए वो उसने पार नहीं किया, वो भिक्षु आया, उसको दान देना था, वो भी पुण्य का काम है, पुण्य का काम करने के लिए उसने अपना ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया, वो फिर दुख अनुभव किया। रावण वेश बदल करके भिक्षु का रूप लिया था, है ना, कई बार हम भी ऐसे करते हैं, किसी को दुख देने के लिए मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं, किसी को सुख देने के लक्ष्य से हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और फिर हम दुखी हो जाते हैं, है ना। तो बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर बात कही थी कि अगर आप मर्यादाओं का उल्लंघन करके सुख दोगे, वो दुख के खाते में जमा हो जाता है, सुख के खाते में वो जमा नहीं होगा, है ना। कई बार ऐसा होता है वो थोड़ा सा बुरा मानेंगे, उसके हाथ का भोजन कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, एक छोटा सा ही नियम है उसका आज उल्लंघन कर ले तो कल से फॉलो करना शुरू करेंगे। थोड़ा 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 करके इतना बड़ा हो जाता है और वही दुख का कारण बन जाता है, है ना। तो इसीलिए जितना हम मर्यादाओं के अंदर रहेंगे उतना हम सुखी रहेंगे, है ना। ये बहुत ध्यान देने की बात है। और जो भी हम पहले, सबसे पहली बात है, अगर हमें खुश रहना है तो सबसे पहली बात है पॉजिटिव सोचना है, गुणों को देखना है, हर परिस्थिति में पॉजिटिव देखना है। और दूसरी बात है बाबा को साथी बना करके चले, है ना। संगम युग में हमारा इतना बड़ा भाग्य है, स्वयं भगवान हमारा साथी है, वो अनुभव हर कदम पर हम उसका अनुभव करते चलेंगे। वो साथीपन का अनुभव तभी हम कर सकते हैं जब हमें बाबा पर पूर्ण निश्चय है। और तीसरी बात है मर्यादाओं को जितना हम फॉलो करते जाएंगे, बाबा की श्रीमत पर हम जितना अपने पटरी अपने गाड़ी को ले जाते रहेंगे, हम उतना सुरक्षित रहेंगे और उतना हम सुखी रहेंगे, है ना। इसीलिए बाबा में इतना निश्चय रख करके, बाबा को साथी बना करके, मर्यादाओं को इतना जितना हम फॉलो करते जाएंगे उतना हम खुश रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। और चौथी बात है, बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, दुख का कारण है इच्छाएं, लेकिन कौन सी इच्छाएं रखनी है और कौन सी इच्छाएं नहीं रखनी है। इच्छाओं के बिना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शुभ इच्छाएं कौन सी है और अशुभ इच्छाएं कौन सी है। शुभ इच्छाएं हैं पुरुषार्थ के साथ कनेक्टेड बातें, सेवाओं के साथ कनेक्टेड बातें हैं। शुभ इच्छाएं जितना हमारे अंदर है उतना हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जा सकते हैं। लेकिन देह भान के साथ कनेक्टेड जो भी बातें हैं, चाहे ये भी कहे कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, मुझे चांस मिलना चाहिए, सेवा करने का चांस मिलना चाहिए, या फिर मुझे पूछना चाहिए लोग, या मुझे ये चाहिए चाहिए, जो चाहिए 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 वो गाते रहेंगे, वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाओं का कोई माना उसका उसके बारे में सोचना ही नहीं है। वो सोचना नहीं है तो फिर क्या करना है, संतुष्ट आत्माएं। जितना हम संतुष्ट होते रहेंगे उतना हमारे अंदर इच्छाएं जागृत नहीं होगी। जो है जितना है उतने में क्या हम संतुष्ट हैं, या और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। अपने आप से पूछना, क्या मैं आत्मा संतुष्ट हूं, हर बात में क्या मैं आत्मा संतुष्ट हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं असंतुष्टता आती है वहां, वो फिर असंतुष्टता होने के कारण से जो वो चाहिए वो नहीं मिलता है, वहां फिर दुख आता है। बाबा ये भी कहते हैं कि जहां संतुष्टता है दूसरे गुण भी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। और देवी देवताओं को देखते हैं, उनका चेहरा जब वो देखते हैं बहुत ही शांत, वो स्माइलिंग फेस होता है। कभी भी वो दुखी देखा है देवी देवताओं को, कभी दुखी या दूसरे मूड में देखा ही नहीं है। हमेशा स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराहट, मधुर मुस्कुराहट में होते हैं वो देवी देवताएं। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि वो आत्माएं संतुष्ट है। वो संस्कार हमें अभी यहाँ ही भरने की जरूरत है। हर हाल में क्या मैं संतुष्ट हूँ, कुछ मिले या न मिले संतुष्ट, कोई पूछे या न पूछे संतुष्ट, कोई दे तो भी संतुष्ट, नहीं दे तो भी संतुष्ट, कुछ मिले तो भी खुश, कुछ नहीं मिले तो भी खुश, दाल चावल में भी खुश, रसगुल्ला पकौड़े में भी खुश, है ना। तो हर हाल में जब हम संतुष्टता की अनुभूति करते जाएंगे तो बहुत जल्दी हम देवी देवताएं बन ही जाएंगे। तो इसलिए वो संस्कार, सुख का संस्कार यहां ही हम भरते जाएं, और जितना हम देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। खजाना बढ़ाने का तरीका क्या है? दे। जितना हम सुख दे दूसरों को, शांति दे, वो फिर खजाना हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। देवी देवताएं कौन है? देने वाले, है ना। जो देने का संस्कार यहां हमें भरना है। तो ये पांच बातें अगर हम धारण करते जाएंगे तो बहुत ही जल्दी हम वो सुख का अनुभव हम कर सकते हैं। तो इसलिए ये गायन है, खुशी जैसा खुराक नहीं। खुशी खुराक माना जाता है, खुराक बहुत थोड़े अमाउंट में लिया जाता है, बहुत ज्यादा भर करके नहीं खाया जाता है। खुराक क्या है? थोड़ा भी खाएं, बहुत शक्तिशाली अनुभव हम कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही खुश हम रहेंगे तो शक्तिशाली हम महसूस करते रह सकते हैं। और चिंता चिता समान कहते हैं, सारी चिंताएं बाबा को देते चले और हल्के रहे और खुश रहे। सतयुगी दैवी दुनिया में जाने की खुशी, बाबा के साथ की खुशी, संगम युग का आनंद हम लेते चले तो जरूर हम ये जीवन भी हम इतना आनंद इस जीवन में भी हम पूरा आनंद हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। अभी अगले 20 मिनट के लिए हम को थोड़ा प्रश्न उत्तर करते हैं। किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, माइक दे दे। पंद्रह बीस मिनट हम प्रश्न उत्तर करें, फिर उसके बाद योग में बैठते हैं।
जिस भाई बहन का प्रश्न हो, आगे माइक रखा है तो यहाँ पर आकर के खड़े होकर के आएंगे और पूछेंगे।
अगर किसी को पर्ची लिख करके भी देना है तो दे सकते हैं, या फिर माइक में आकर के पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आज बट्टी का लास्ट डे है, भर के जा रहे हैं, सब भरपूर अनुभव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किसको कुछ पूछना है तो आ जाइए आगे, माइक रखा है नीचे। यहां सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। आइए यहां नीचे। बाबा कहते हैं जब तक जीना है तब तक सीखना है, है ना। जब तक जिज्ञासा नहीं है ना तब तक हम सीखते
हैं। ओम शांति दीदी। यदि कई बार हमारी गलती नहीं होती है, मतलब फिर भी ऐसा, मतलब सामने वाली आत्मा से रिएक्ट होता है कि पता नहीं हमने कितना गलत कर दिया है, और उस टाइम में मतलब दिल सिकस्त हो जाता है ऐसे, मतलब हमारा ऐसे नेगेटिव चिंतन चलने लग जाता है कि ऐसा क्यों हुआ करके।
आपकी गलती नहीं होता है तो सामने वाला व्यक्ति आपको आपके ऊपर आरोप डाल रहे हैं, लगा रहे हैं ऐसे। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है डोंट केयर करने का हर बात, क्योंकि हर बात को मन पे लेंगे तो आप खुद टेंशन में आएंगे। अपने आप को पूछना है, बाबा को, बाबा के सामने जाकर के बाबा को पूछना कि बाबा सचमुच मेरी गलती है? अगर आपको ये जवाब आता है कि आपकी गलती नहीं है, और अंतरात्मा की आवाज भी आती है कि यह सचमुच अपनी गलती है तो ठीक है, मान लेने में ही भलाई है, अगर सचमुच अपनी गलती नहीं है तो डोंट केयर करना है। भले वो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि सच को सिद्ध नहीं किया जा सकता। जितना भी आप बोले कि नहीं मैंने नहीं किया है, मेरी इंटेंशन ऐसा नहीं था, मेरा भाव ऐसा नहीं था, सामने वाला व्यक्ति माने या न माने, कभी मानते हैं कभी नहीं भी मानते हैं। अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं है, कि हमें अपने कॉन्शियसनेस के साथ क्लियर रहना है, अपने मन के साथ क्लीन रहना है और बाबा के साथ बहुत ही साफ रहना है। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है।
दीदी मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, दीदी सपोज हमारी किसी आत्मा के साथ बहुत ही कड़े हिसाब किताब है, तो मीन्स हम उनके प्रति ये सुभावना रख सकते हैं कि ये भी मतलब बाबा के बच्चे बन जाए, तो इसमें हद का तो कुछ वो नहीं है ना? मतलब
नहीं, शुभ भावना रख सकते हैं कि यह आत्मा भी बाबा से वर्षा पाले। शुभ भावना रखना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना हमारा फर्ज है, लेकिन उसका अगर पार्ट है वो खुल जाएगा, अगर पार्ट नहीं है तो क्या कर सकते हैं,
है ना? थैंक यू सो मच।
तो शुभ भावना तो रखना चाहिए हर आत्मा के प्रति।
ओम शांति। मेरी 72 साल की उम्र है, अब तक मैंने मुरली सुनिया भी, ज्ञान सुनिया भी, तो मेरी समझ से क्यों मैं गीता और रामायण भागवत के इन बातों के मैं उलझी हुई थी। यहाँ आकर मैंने सुरग समान माहौल देखा और मैं शिव बाबा की बच्ची बनने की मेरी इच्छा एकदम से बदल गई। मुझे शिव बाबा की बच्ची बनकर रहना चाहिए, जो हमें साक्षात हमारे सामने हैं, हम उनके साथ बात करें। और जो जिसने मेरा जीवन बीता, तो जैसे कि मेरी गीता है, मैं पाठ करूं गीता का।
तो ठीक है, आपका प्रश्न क्या है?
मेरा प्रश्न ये है कि मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती।
क्या नहीं छोड़ सकते?
गीता का
गीता पाठ पढ़ करना।
हाँ जी,
ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अगर करना है। हाँ, बाबा कभी मना नहीं करता।
अच्छा जी,
लेकिन अगर गीता पाठ भी पढ़ रहे हैं।
हाँ, हाँ,
लेकिन उसका उसका अर्थ समझ करके पढ़ना।
हाँ जी, मेरी सबोधनी गीता है, वाक्य है जी, उसमें सारे लिखे हुए हैं,
उसका सही अर्थ समझ करके करना है।
ठीक है।
एक प्रश्न आया बहन जी कि युगल ज्ञान में नहीं चलता है, घर में तामसिक भोजन बनाते हैं तो घर में रसोई में जो उसकी बदबू भी आती है तो बाबा को भोग लगाने में भी दिक्कत आती है, तो उस माहौल में हम कैसे, उस स्थिति में कैसे मैनेज करें?
जिस किचन में तामसिक भोजन बनता है वहां भोग नहीं लग सकता, नहीं लगा सकते आप, है ना? अगर नॉनवेज है, नॉनवेज भोजन पक रहा है उसी किचन में, फिर आप बाबा को भोग लगाओ, ये श्रीमत नहीं है। या फिर अलग कुछ ऐसा प्रबंध करें, बाबा के लिए अलग किचन बनाए, अलग करे, वो फिर हो सकता है। या फिर अगर नहीं कर सकते, अगर बंधन है घर में, तो फिर बाबा जब भी आप मतलब ऐसे ही पानी रख करके ऐसे ही बाबा को याद करना, उसको दृष्टि दे करके पानी पी लेना, बस ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, है ना? क्योंकि बंधन है।
तो फल वगैरह का तो भोग लगा सकते हैं ना? फल वगैरह का
नहीं,
फल का भी नहीं लगा,
उस किचन में भोग ही नहीं लग सकता जहां नॉन वेज भोजन बन रहा है।
जो बाबा का रूम या फोटो अलग रखा हो उस स्थान पर फल वगैरह का भोग फिर लगा सकते हैं?
हाँ अलग है बाबा का कमरा, क्योंकि अगर बंधन है तो बाबा का कमरा है नहीं, अगर हो अलग जगह है बाबा के लिए तो फल भले लगाए, लेकिन उस किचन में ही लगाना वो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां के वाइब्रेशन तो एकदम तामसिक हो जाता है ना, तो वहां नहीं लग सकता वो भोजन, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी होती है नॉनवेज भोजन में, तो इसीलिए वहां तो बाबा का नियम नहीं है। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है?
जिसको पूछना है जल्दी जल्दी उठ करके आएंगे, इधर आके बैठ जाएंगे तो टाइम बच जाएगा, क्योंकि अभी 15 मिनट केवल हमारे पास है।
तेलुगु में है शायद, वो हिंदी में बोल दीजिएगा। हाँ पूछ लीजिए बहन जी, माइक लेकर के आप पढ़ लीजिए।
प्रश्न है बहन जी कि बाबा साक्षी रहते हैं, बाबा साक्षी रहते हैं तो हमारे परिवार में कहीं कुछ ऐसी घटनाएं होती है, तो हम जब साक्षी माना कोई ऐसी नुकसानदायी घटना हो तो उसमें हम कैसे साक्षी रहे, हमको साक्षी रहना है कि नहीं रहना है?
बाबा हमेशा न्यारा और प्यारा रहने के लिए कहते हैं, हर बात में साक्षी नहीं रहना है, न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखना है। अगर कुछ परिस्थिति है जहां हम मदद कर सकते हैं करना चाहिए, हाँ अगर या ऐसे जाना चाहिए, एनर्जी शक्तियां हमारी हमेशा ऐसा जाना चाहिए, वहां से नेगेटिव हमारे पास पहुंचना नहीं चाहिए। अगर वो दुखी है उनके दुख में हम भी दुखी हो जाए नहीं, वो दुखी है उनको शक्ति भरना है, हमें उनसे थोड़ा सा ऊपर रहना है, माना आत्मा शक्तिशाली स्थिति में होगी तभी हम उन आत्माओं को सकाश दे सकते हैं, हम साक्षी नहीं रह सकते उन बातों में, है ना। मदद तो करना चाहिए, देवी देवताएं तो देने वाले हैं ना, साक्षी कब होना है वो भी हमें समझ लेना चाहिए कि साक्षी अगर मैं उस हालत में कुछ कर नहीं पा रही हूं, कर नहीं सकते हैं, मेरे लिमिटेशन में है ही नहीं वो बात, तो हम साक्षी हो जाएंगे। मान लीजिए पोल्यूशन है तो जितना मैं कर सकती हूँ उसके लिए मैं कर रही हूं, लेकिन कुछ मैं ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती हूँ, साक्षी हो जाना है। अगर कोई किसी का कुछ ये हो रहा है तो मैं बोलू भी, अगर वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, नहीं सुनते हैं तो हम साक्षी हो जाते हैं, है ना। जहां हम कुछ कर नहीं सकते वहां हम साक्षी हो जाते हैं, जहां हम कर सकते हैं वहां कर लेना चाहिए।
मतलब ऐसा हमको देखना है, समझो बच्चे को भूख लगी और माँ बोले खाना नहीं खिलाना, मेरे को साक्षी हो जाना है, ऐसे नहीं तो वहां पर तो उसको खाना खिलाना जरूरी है, तो साक्षी कहाँ आना है वो बाबा जो ज्ञान दिया है उसके आधार से हमको समझना है। एक प्रश्न आया बहन जी, एक वकील भाई का प्रश्न है, तो वकील के पास सब प्रकार के केसेस आते हैं, कई बार कोई क्रिमिनल केसेस भी आते हैं, तो उनका भी केसेस उनको लड़ना पड़ता है, तो जो क्रिमिनल केस में उस क्रिमिनल व्यक्ति का केस लड़ रहे हैं वो, तो उसका उसको सपोर्ट भी करना पड़ेगा, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा,
अपना चॉइस है,
तो यही प्रश्न है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्योंकि हमारा धंधा है तो उसमें हम कैसे ये करना हमको नहीं करना है जो केस क्रिमिनल काम के पास है?
जब कोई भी प्रोफेशन में व्यक्ति जाता है उसका प्रोफेशनल एथिक्स होता है, जब डॉक्टर बनता है व्यक्ति तो वो ओथ लेते हैं हम हर हाल में पेशेंट को मदद करेंगे, ये वो प्रतिज्ञा लेते हैं। जब लॉयर बनते हैं तभी भी आप प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम लोगों को बचाएंगे, अगर बाबा के बच्चे बनने के बाद तो और ही हमें मूल्यों को धारण करना है और सही लोगों की मदद हमें करनी है। और हमारे पास अगर ताकत है, पढ़ाई है, तो सही लोगों की मदद करने में उसको यूज करना है, ना कि गलत लोगों की मदद करने के लिए। भले आपका प्रोफेशन है, लेकिन आपकी डिसीशन है आप किसको मदद करना चाहते हैं। क्रिमिनल को मदद करना चाहते हैं या विक्टिम को मदद करना चाहते हैं, वो आपका डिसीशन है, है ना। तो कोई बंदा हुआ नहीं है। जैसे एक बार मुझे याद आता है, रमेश भाई और ब्रिजमोहन भाई दोनों सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी किए हुए हैं, और ब्रिजमोहन भाई बाकरा नंगल में वहां और उसके उस इसमें वो काम करते थे। रमेश भाई अपना खुद का बिजनेस चलाते थे। दोनों बाबा के पास गए, दोनों के पास एक प्रश्न था। बाबा जो जब क्लाइंट्स के पास जाते हैं तो वो चाय ऑफर करते हैं, तो क्या उनके हाथ की चाय हम पी सकते हैं क्या? तो दोनों इकट्ठे नहीं गए, पहले ब्रिजमोहन भाई गए बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के पास, और बाबा को पूछा, बाबा ये हालत है कि जब क्लाइंट्स आते हैं तो चाय ऑफर करते हैं, तो मैं चाय पी सकता हूं? तो बाबा ने कहा, हाँ बच्चे, बाबा को याद करके, दृष्टि दे करके आप चाय पी सकते हो। वो बाहर आए और रमेश भाई को बोला कि बाबा ने ऐसे ऐसे कहा। रमेश भाई भी खुश हो गए, तो शायद बाबा मुझे भी वही जवाब देंगे, मैं चाय पी सकता हूं। तो वो गए और बाबा को पूछा, बाबा मैं चाय पी सकता हूं? जब क्लाइंट्स आते हैं तो ग्राहक आते हैं तो चाय ऑफर करते हैं। बाबा ने कहा, नहीं आप नहीं पी सकते हो। तो वो बाहर आ गए, कंफ्यूज्ड हो गए। बाबा ब्रिजमोहन भाई के लिए हाँ कहा, रमेश भाई के लिए ना कहा, दोनों कंफ्यूज्ड। अभी फिर इकट्ठे होकर के फिर बाबा के पास गए और बाबा को पूछा, बाबा ऐसा क्यों, इनके लिए हाँ मेरे लिए ना? तो बाबा ने कहा कि ब्रिजमोहन भाई के लिए कि आप किसी के अंडर काम करते हो, आप मालिक नहीं हैं, तो इसीलिए बिजनेस का सवाल है। अगर आप चाय नहीं पिएंगे तो बिजनेस नुकसान हो जाएगा, तो इसीलिए बाबा आपको छुट्टी देता है, आप बाबा को याद करके, दृष्टि दे करके आप चाय पी सकते हो। और रमेश भाई के लिए कहा, आपका खुद का बिजनेस है, चाय पिलाने के लिए आपके पास वो क्लाइंट्स नहीं आते हैं, आपके साथ बिजनेस करने के लिए आते हैं, आपके बिजनेस के कारण से आते हैं, चाय पीने या पिलाने के लिए नहीं आते हैं। अगर आप मना करो तो भी वो लोग आपके पास आएंगे आपके काम के लिए, तो इसलिए आप नहीं पी सकते हो, है ना। तो इसलिए बाबा का जो श्रीमत है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग श्रीमत है ना। तो लेकिन वो जो छूट देने का अधिकार केवल बाबा को है। अपने मन से बोले कि हाँ मैं बाबा को याद करके मैं पी लूंगा, वो गलत हो जाएगा। या फिर बाबा को याद करके मैं गलत काम कर लूंगा, ये फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए बाबा को याद करके सही काम, सही लोगों की मदद करने की जरूरत है।
तो इसलिए यदि क्रिमिनल का केस लेंगे तो पैसा देगा तो उसका पक्ष लेना ही पड़ेगा, इसलिए बेटर है कि ऐसे केस ना ले।
भले दो चार पैसे कम कमाए, लेकिन फिर क्रिमिनल का साथ तो नहीं देना है ना?
एक प्रश्न आया बहन जी, मेरे युगल ज्ञान में नहीं चलते हैं और मुझे कहते हैं जब तक तुम सेंटर पर जाना बंद नहीं करोगी तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, और 3 महीने से मेरे साथ उन्होंने बात भी नहीं की है, तो इस आत्मा के साथ कैसे चलना चाहिए? और माताजी सेंटर पर जाना बंद नहीं करना चाहती है, तो सेंटर पर जाना भी बंद नहीं हो और उसको भी कैसे हैंडल करना है, तो कैसे उसके साथ चलना है, कैसे बातचीत करना है?
ये आपके लिए परीक्षा है, कैसे पास करेंगे वो आपके ऊपर है। बाबा के सेंटर जाना तो बंद नहीं करना है, लेकिन आपको योग शक्तिशाली करना है, अमृत वेले उठ करके उस आत्मा को सकाश देना। फिर जब भी आप भोजन बनाते हो, बाबा की याद में रह करके भोजन बना करके बाबा की याद का भोजन उसको खिलाना है। और जब भी भोजन बनाने जाएंगे, नहा धो करके साफ होकर के फिर ही किचन में जाएं और बाबा की याद में भोजन बना करके खिलाएंगे तो जरूर धीरे धीरे परिवर्तन जरूर आएगा, क्योंकि बाबा के पास इतनी शक्ति है, पूरा संसार बदल सकता है बाबा की शक्ति से, तो क्या एक आत्मा की परिवर्तन नहीं हो सकता? परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन यहाँ आपकी निश्चय की परीक्षा है, कितना निश्चय है आपको बाबा में। वो धीरे धीरे निश्चय में आप अड़े रहे, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
एक प्रश्न है बहन जी, कभी कभी कई बार जो रिलेशंस बहुत क्लोज रहते हैं तो उनसे प्यार से बात भी करते हैं तो भी उनका रेस्पॉन्स जो है नेगेटिव ही आता है, रूडली मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उस रिलेशनशिप में हम क्या करें? उनके साथ भी रहना
है? एक्सपेक्टेशन ही क्यों रखना है कि वो व्यक्ति मेरे से प्यार से बात करे? वो इच्छा रही ना, तो एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, आप केवल देते जाइए देते जाइए, कभी ना कभी वो व्यक्ति परिवर्तन हो ही जाएगा। कि ये आश रखते है ना कि वो मेरे से अच्छा बात करे, प्यार से बात करे, प्यार से व्यवहार करे, वो भी इच्छा छोड़ दीजिए। आप अच्छा करते जाए, वो धीरे धीरे उस आत्मा के का परिवर्तन हो जाएगा।
दूसरा प्रश्न है उनका ही, कई बार गलत होने पर हम शांत रहते हैं तो सामने वाला हमें किसी बात में कुछ समझता नहीं है, वैल्यू नहीं देता है, तो हमें चुप रहना चाहिए या कैसे जवाब देना चाहिए?
हर समय के लिए हर परिस्थिति को देखते हुए हमें निर्णय लेने की जरूरत है। अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर हम चुप रहेंगे तो उनको महसूस ही नहीं होगा कोई गलत कर रहे हैं। भले तुरंत हम न कहें, तुरंत जवाब न दें, लेकिन बाद में प्यार से बिठा करके उस व्यक्ति को समझाने की जरूरत है। देखो भाई, ये जो काम कर रहे हो वो गलत है। या मिसाल के तौर पर बातों बातों में वो व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, मुझे बहुत हर्ट हो गया, बहुत दुख मिला उस शब्द से। वो तो कैजुअली बोल के चला गया, उसको पता भी नहीं चला कि मैं हर्ट हूं, मुझे दुख मिला है उस बात से, उसको पता भी नहीं है। मैं दुखी होकर के ये सोची जा रही हूँ, ऐसा कैसे बोल सकता है? मैं इतना मदद किया है, इतना कुछ किया है उस व्यक्ति के लिए, ऐसा कैसे बोल सकता है? मैं परेशान हो रही हूँ, और बोला भी नहीं, उसको कैसे समझ में आएगा कि मैं परेशान हूँ? तो बाद में जाकर के अगर प्यार से बिठा करके बोलेंगे, भाई आप क्यों ये बात कही, मुझे बहुत बुरा लगा आपके बात से, तो उसको महसूस भी कराने की जरूरत है। जब उसको पता चलेगा मुझे बुरा लगा है, तो वो आगे से वो काम नहीं करेगा या वो शब्द वो यूज नहीं करेगा। इसीलिए हमें वो कम्युनिकेशन क्लियर रखने की जरूरत है। चुप कहाँ रहना है? बोलने के बाद भी वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, बोलने के बाद भी जानबूझ करके वो कर रहा है, मेरे हाथ में है ही नहीं ना। मुझे जो बोलना था प्यार से बोला, थोड़ा सा फर्म होकर के बोला, थोड़ा सा हर तरीके से बोलने के बाद भी वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब जाकर के चुप होना है। स्टार्टिंग में ही चुप नहीं होना है, उसको थोड़ा बताने की जरूरत है।
और एक प्रश्न आया है कि आपका स्टाफ इतने बड़े कैंपस को हैंडल करता है, आप बाबा के बच्चे के साथ साथ मनुष्य भी है, अगर आपको गुस्सा आता है तो उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं?
गुस्सा बहुत आता था पहले। मेरे अपने बारे में पूछ रहे हैं या किसी और के लिए पूछ रहे हैं? मेरे बारे में पूछ रहे हैं। मुझे पहले आता था बहुत, लेकिन धीरे 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 पुरुषार्थ करते करते वो कम होता गया। क्योंकि कोई भी ऐसा संस्कार है ना, तुरंत नहीं जाता है, लेकिन उस पर मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन अभी कुछ भी अगर गलत होता है, मतलब क्यों गुस्सा आता है वो पहले सबसे पहले देखने की बात है। अगर मैं जैसा चाहूं, जैसा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सोचा है ऐसा ऐसा होना है, लेकिन उसमें थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर गुस्सा आएगा। क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि जैसा मैंने सोचा था होना है वो ऐसा नहीं हो रहा है। कि वो ऐसा नहीं हो रहा है तो इसलिए गुस्सा आ रहा है, क्यों? वहां कहीं ना कहीं ईगो है। जैसे मैं चाहूं वैसा ही होना चाहिए, ये ईगो आ गया ना। ये भी वो अहम नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो सोचा था उस प्लानिंग तो कर लिया, लेकिन करते करते कुछ ना कुछ चेंजेस तो होगा ही ना। क्योंकि उस कार्यक्रम में अगर 10-15 लोग इन्वॉल्व हैं, कि केवल मेरे से तो नहीं चलेगा ना, मैं जैसा चाहूं वैसा तो नहीं चलेगा। हर व्यक्ति करते करते कुछ ना कुछ थोड़ा सा बहुत अंतर तो आ ही जाएगा, तो उसको भी एक्सेप्ट करके फिर हमें उस चीज को चलाने की जरूरत है। जहां आपस में प्यार होता है वहां गुस्सा नहीं आएगा। आपस में वो संबंध अगर ठीक होता है वहां गुस्सा नहीं आएगा। और दूसरी बात, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरी सेवा नहीं है, बाबा की सेवा है, है ना। तो बाबा की सेवा है, हम सब मिल करके कर रहे हैं। जब ये भावना आएगी तो वहां गुस्सा नहीं आएगा। थोड़ा बहुत अंदर आ भी गया तो वो बहुत तुरंत ही कम हो जाता है। ऐसा नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि मुझे बिल्कुल नहीं आता है। अगर आ भी जाता है लेकिन कुछ मिनटों में वो खत्म भी हो जाता है। पहले आता था वो कर्मों में भी आ जाता था, बोल में भी आ जाता था, लेकिन अभी कर्म और बोल में नहीं आता, संकल्प में आता है, एक दो मिनट रहता है और फिर वो खत्म होता है। लेकिन पुरुषार्थ इतना हमारा हो, संकल्प में भी वो बात उठे नहीं, है ना।
एक प्रश्न है दीदी, जैसे हम घर पर भोग लगाते हैं, बाबा को बुलाते हैं, सुख समय बाबा आते हुए दिखाई भी देते हैं, भोग लगाते हैं, तो क्या सचमुच भोग लगाते हैं? माता जी का प्रश्न है।
भोग
जैसे बाबा को भोग लगाते हैं, उनको ये महसूस होता है कि बाबा आए भोग लगे, तो क्या बाबा सचमुच भोग लगाते हैं?
हाँ, अगर सच्चे दिल से आप बाबा को भोग स्वीकार करा रहे हैं तो सचमुच बाबा भोग स्वीकार करेंगे। क्योंकि वही बात क्लास में कही थी ना, निश्चय। हम तो पुरुषार्थ कर रहे, लेकिन सचमुच क्या बाबा मदद कर रहा है? क्या सचमुच भोग तो लगा रहे, लेकिन सचमुच क्या बाबा आकर के भोग स्वीकार कर रहे हैं? अगर संशय आया तो फिर बाबा है ना। तो इसीलिए जब भी आप प्यार से भोग लगाएंगे तो जरूर बाबा भोग स्वीकार करते हैं।
एक प्रश्न है कि हम दूध खरीदते हैं, घर में पीते हैं, दूध बाहर से खरीदते हैं और घर में उसको पीते हैं उबाल करके, तो हमें दूध लेना है, तो नहीं तो जैसे दूध वाले से हम दूध खरीदते हैं तो अज्ञान से दूध लेते हैं, तो हमें दूध पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? साथ साथ दूसरा एक प्रश्न है, यदि हम दूध तो मना कर देते हैं लेकिन बाहर जो अज्ञान से हम चाय भी नहीं पीते लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स भी अज्ञान का बना हुआ है, तो इसमें आप दोनों का स्पष्ट कीजिए।
कोल्ड ड्रिंक्स पीने का हमने शुरू किया है, वो बाबा का श्रीमत नहीं है। अगर आप पी रहे हैं तो आपके मन से पी रहे हैं, वो बाबा का श्रीमत नहीं है। हाँ, दूध आप ले सकते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो सब्जी भी आप खरीदते हैं, चावल भी खरीदते हैं, दाल भी खरीदते हैं, सब कुछ आप खरीदते हैं ना। तो आप थोड़ी आप अपने गार्डन में उगाते हैं सब चीजें, नहीं उगाते हैं ना, तो सब कुछ तो खरीदते ही हैं। तो ये सब चीजें तो खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन फिर आने के बाद उसको हम पकाते हैं ना। अगर फ्रूट्स भी लाते हैं बाहर से, उसको धो करके बाबा की याद में फिर उसको खाते हैं, है ना। तो वो पकाया, बाहर वाले व्यक्ति उसको पकाया नहीं है, मतलब कुक नहीं किया है, उसको पकाया नहीं है, तो इसीलिए उसको हम यूज कर सकते हैं, उसको हम खा सकते हैं। लेकिन जब भी वो खाना पकता है उसके वाइब्रेशंस उसमें जाता है, तो इसीलिए वो हम नहीं खाते। कूल ड्रिंक्स भी ना पिए तो अच्छा है।
तो क्योंकि बहुत सारी चीजें आजकल बोलते हैं ना, ये तो
मशीन मेड है, किसी का हाथ नहीं लगा है, मशीन मेड है, मशीन में ही सारा ये हुआ, किसने हाथ नहीं लगाया उसको, ये सब कहने की बातें हैं। और खास करके पानी, लिक्विड जो है, लिक्विड में ज्यादा अब्सॉर्ब करने की ताकत है। अगर कूल ड्रिंक्स पी रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है।
एक और प्रश्न है माता जी का कि जब योग में बैठती हूँ तो मुझे नींद आती है, बहुत कोशिश करती हूँ फिर भी आलस से दूर नहीं होता है, तो क्या करें?
चाय पी करके बैठ जाइए, स्ट्रॉन्ग चाय या कॉफी पी करके बैठ जाइए, नींद नहीं आएगा।
एक अगला प्रश्न है, खान पान की समस्या परिवार से ही आती है कि बच्चों के हाथ से तो खाना ही पड़ेगा, घर में क्लेश न हो तो क्या करना चाहिए? माता जी का प्रश्न है कि खान पान की जो समस्या है वो परिवार में आती है, तो खुद में अभी समझो बुजुर्ग हो गई है तो बच्चों का बनाया हुआ खाना पड़ेगा उनको बच्चों के हाथ से।
अगर बुजुर्ग हो गए हैं, हाथ पैर नहीं चलता है, खुद के लिए खाना बना नहीं सकते, तो फिर बाबा का श्रीमत ये है कि भले याद करके आप स्वीकार कर सकते।
और जब तक वो अपने हाथ से बना सकते हैं,
जब तक आप अपने हाथ से बना सकते तो भले आप बना करके खाएं।
अगला प्रश्न है, हम बाबा मुरली में कई भाषाओं में पढ़ाते हैं, रोज मुरली भी कई भाषाओं में आती है, तो ये पूछना है कि सतयुग में कौन सी भाषा होती है?
देवनागरी भाषा, हिंदी और संस्कृत नहीं होता है वहां, देवनागरी भाषा बहुत सुंदर भाषा है।
तो देवनागरी भाषा किस प्रकार की होती है?
किस प्रकार से माना?
देवनागरी भाषा के शब्द कुछ किस प्रकार के होते हैं, कुछ शब्द बताएंगे तो?
अच्छा, कुंभ, जो कुंभ है ना, केश छिलकारी कहते हैं उसको, है ना,
कंगी को
केश छिलकारी कहते हैं देवनागरी में। और क्या,
टूथब्रश
को क्या कहते हैं, मुझे याद
नहीं, दंत छिलकारी
दांत तो छीलते नहीं है लेकिन दंत छिलकारी है वो। ऐसे कुछ शब्द है, अलग अलग ही शब्द होगा, हिंदी वाला शब्द नहीं होगा वहाँ।
एक अगला और प्रश्न है, दिनचर्या में जो भी कर्म करते हैं उसका चिंतन सोपन में क्यों आता है और इसका निदान कैसे हो सकता है?
दिन भर जो कार्य करते हैं,
स्वप्न में आता है, तो स्वप्न में क्या आता है, कैसे उसको हम समाप्त कर सकते हैं?
क्योंकि स्वप्न में जो भी बात आती है वो सबकॉन्शियस माइंड में जो बात है ना, अचेतन मन जो है उसमें जो बात है वो स्वप्न में आता है, संस्कार में जो बात है वो सारी बातें वो फिर स्वप्न में आता है। इसलिए बाबा कहते हैं योग से ही उस बात को आप नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और दूसरी बात, योग करने, नींद करने से पहले, सोने जाने से पहले आप शक्तिशाली योग में बैठ करके फिर 15-20 मिनट शक्तिशाली योग करके फिर अगर सोते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड पूरा साफ होता है।
तो सब कुछ बाबा को सौंप के हल्के होकर के सोना है। तो लास्ट प्रश्न है, मैं गृहस्थी हूँ, मैं बाबा का सेंटर स्थापन करने के निमित्त बनना चाहता हूँ, तो क्या मैं इसके निमित्त बन सकता हूँ? इसके लिए मुझे किस चीज की जरूरत है, क्या करना है?
उसको पूछना ही नहीं ना, आप अपने सेंटर की बहन से संपर्क करें, कहाँ सेंटर खोलना है, नियम अनुसार बाबा की जो श्रीमत है उस अनुसार आप जरूर खोल सकते हैं, ऐसे मनमत से नहीं, लेकिन आपके सेंटर के बहन के साथ कनेक्टेड होकर के वो जहां जरूरत है वहां जाकर के खोलेंगे तो फिर उसका लाभ होगा। ऑलरेडी एक सेंटर है तो वो फिर उसी गली में जाकर के दूसरा सेंटर खोलेंगे तो उसका क्या फायदा है ना, तो इसीलिए उस रीति से चलो।
ओम शांति दीदी जी, मैं जब अमृत वेला उठ नहीं पाती, कभी कभी उठती हूँ, और जब उठती हूँ बाबा को याद करने बैठती हूँ तो थोड़ी देर तो ठीक रहता है, और फिर बाद में ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने गर्दन को पीछे खींच लिया, और फिर मैं धक्के से आंखें खोलने की कोशिश करती हूँ, और फिर भी जैसे जबरदस्ती कोई पीछे खींच रहा है, ऐसे महसूस होता है।
शायद आपको नींद का जो है ना उसका असर रहता है?
नहीं नहीं, नींद पूरी हो जाती
है। पूरी हो जाती है, तो इसीलिए रात को जैसे कहा गया, कहा रात को सोने से पहले अच्छी तरह बाबा को याद करके बाबा को बोलना, बाबा मुझे अमृत वेले में उठाना, इतने बजे, 3:30 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, तो बाबा को बोल करके दृढ़ संकल्प करके फिर सोना, तो बाबा जरूर आपको उठाएंगे। और फिर जब उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करना, और बाबा की याद में उस रीति से शक्तिशाली स्थिति में बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा आपको। डर को निकालो दिल से, ऐसा होता है वैसा होता है, डर निकालेंगे तो सब कुछ ठीक होगा।
ये प्रश्न है,
हाँ
दो प्रश्न बस लास्ट।
तो
हम हनुमान के दरबार में जाते हैं, यदि नहीं जाते तो सारे बीमार हो जाते हैं। तो माता जी का प्रश्न है कि अब सोचती हूँ कि केवल बाबा की ही बन जाऊं, लेकिन फिर डर लगता है कि नहीं गए तो फिर कहीं बीमार ना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करें?
आप तो हनुमान जी की भी पिता के पास आ रहे हो, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते, है ना। हनुमान जी से भी शक्तिशाली है ना शिव बाबा, तो उसके पास आ रहे हैं, वो कभी आपको वो श्राप नहीं दे सकते है? क्योंकि बच्चे को छोड़कर पिता के पास आ रहे हैं ना, तो वो नाराज नहीं होंगे, आप निश्चिंत रहो।
तो मन से ऐसा डर निकाल देना है कि दोबारा बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा सोचना भी नहीं है, सोच भी बदलना है, और सोच बदलने के साथ साथ बाबा के साथ गहरा योग भी रखना है। तो एक प्रश्न है, अभी अंतिम समय चल रहा है, अभी का पुरुषार्थ आने वाले समय के लिए कैसा होना चाहिए, कौन सा पुरुषार्थ हमको करना चाहिए, और एकाग्रता की शक्ति कैसे बढ़ाएं?
न्यारा और प्यारा रह करके, क्योंकि गृहस्थ में हम सब रह रहे हैं, तो आपको न्यारा और प्यारा बन करके आपका केवल एक लक्ष्य रहे कि पुरुषार्थ करना है और सत्युगी दुनिया में जाना है, और दूसरी जो भी काम करना है केवल निमित्त मात्र कर रहे हैं, है ना। तो साथ में रह रहे हैं, परिवार के परवरिश करनी है, उनके देखभाल करना है, वो केवल निमित्त मात्र कर रहे हैं, लेकिन पूरा अपना जो अटेंशन है, अपना ध्यान है, अपना फोकस है, पूरी तरह सत्युग के तरफ, बाबा के तरफ रहे। इसलिए भले पैर जमीन में है लेकिन बुद्धि परम धाम में रहे, कमल फूल समान, भले हम किचड़े में हैं, परिवार में है, लेकिन पूरा न्यारा और प्यारा, ये स्थिति बना करके रखना होगा, क्योंकि बहुत कम समय है, कम समय में ज्यादा पुरुषार्थ करना है, ज्यादा हमें अनुभव करना है।